पृष्ठ संख्या 145, 10। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पश्चिम में उत्तर आधुनिक चिंतन पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस की जाने लगी थी। उससे जुड़ी शब्दावली और सोच की जकड़ ढीली पड़ने लगी थी। पर उसी दौर में हिंदी आलोचना में इस प्रवृत्ति की उत्तरजीवी लहर के प्रति सहसा उत्साह दिखाई पड़ने लगा। ऐसे लेखकों की न संख्या बहुत थी न चिंतन में मौलिकता, पर इंटरनेट की सुविधा से विदेशी सामग्री सहज सुलभ हो चली थी। उसी के आधार पर इस चिंतन पद्धति से जुड़े कुछ नामों और अवधारणाओं की वाचक पारिभाषिक शब्दावली की बौछार सहसा हिंदी आलोचना में एक सीमित दायरे में दिखाई पड़ने लगी। देरिदा, फूको, रोलां बार्थ और तमाम नामों का और पाठ के विखंडन की दृष्टि का बहुतायत से उद्धरण इन लोगों की आलोचना का चालू मुहावरा हो गया। फ्रांस में 7वें-8वें दशक में देरिदा ने अपनी विखंडनवादी दृष्टि से विश्व के बौद्धिक माहौल पर निर्णायक प्रभाव डाला था, पर उनके विखंडनवाद को किसी परंपरा सम्मत रूप विधान में हटाना संभव नहीं था। वहाँ ना विधाओं के वर्गीकरण का सिद्धांत है, न कोई तत्ववाद और न प्रयोग की सुनिश्चित पद्धति। वे लेखन की अद्वितीयता इस अर्थ में मानते थे कि पाठ के बाहर कुछ नहीं है, और चूंकि पाठ के बाहर कुछ है ही नहीं, तो समीक्षा उसकी समझ के लिए बाहरी प्रमाणों या कार्य के कारणों की खोज न करके केवल पाठ कृति का विखंडन करती है। विखंडन के द्वारा ही समीक्षा लेखक की कैद में दबे अर्थ को मुक्ति देती है। वह अर्थ जो ज्ञान रूप में सांस्कृतिक कर्म के द्वारा लेखन के भीतर निहित रहता है। दिक्कत की बात यह है कि चूंकि विखंडन की कोई निश्चित पद्धति या पृष्ठ संख्या 146 प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, इसलिए हर समीक्षक अपने ढंग से विखंडन करने और तथाकथित अर्थ तक पहुँचने और उसे पाने और मुक्ति देने के लिए सर्वतंत्र स्वतंत्र है। विखंडन इस रूप में साहित्य की उत्तर आधुनिक स्थिति है। यहीं से साहित्य सिद्धांत नाम की विधा की शुरुआत होती है, और वह दर्शन और समाजशास्त्र का दर्जा और स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करती है। देरिदा के इस विखंडनवाद से समीक्षा को एक सम्मानजनक हैसियत तो मिली, और उस मिथ का भंजन भी हुआ जो मूल पाठ के मुकाबले आलोचना को दोयम दर्जे का काम मानती रही है। पर विखंडन को आलोचना कर्म का एकमात्र कर्म और धर्म मानने से एक बहुत बड़ी सुविधा और दूसरी उतनी ही बड़ी अराजकता के लिए बेहद मैदान तैयार हुआ, क्योंकि यह सिद्धांत आत्यंतिक रूप में किसी अर्थ या किसी व्याख्या की अनिवार्यता और वर्चस्व की केंद्रीयता से इनकार करता है। इसलिए आलोचना के खुले मैदान में इसने बेलगाम घुड़दौड़ की गुंजाइश भी पैदा की। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में पहले ही एक संस्था के रूप में लेखक की मृत्यु की बात को तरह तरह से दोहराया जा रहा था। शताब्दी के अंत तक पहुँचते पहुँचते साहित्य के अस्तित्व के संकटग्रस्त हो जाने की बात भी जोर शोर से कही जाने लगी थी। शब्द संरचना के माध्यम से रूप में साहित्य के विलुप्त होने की सूचना उत्तर आधुनिक विचारक दे रहे थे। ये लोग साहित्य ही नहीं, आल्विन, करनेन, इतिहास, फ्रांसिस फुकुयामा, विचारधारा, डेनियल बेल के साथ आधुनिकतावाद और साम्यवाद सबकी अंत्येष्टि कर चुके थे। 21वीं सदी इसी अंतवाद के दरवाजे पर खड़ी आने वाले समय को दस्तक दे रही थी। गरचे हिंदी और भारतीय भाषाओं के साहित्य में स्थित ठीक ऐसी ही नहीं थी, फिर भी हम दर्शन, कला, इतिहास, विचारधारा, साहित्य सब के निषेध से खाली युग में प्रवेश करने के लिए उत्साहित खड़े थे। यह उत्तर आधुनिक परिदृश्य सब कुछ के भूमंडलीकरण, अमेरिकी आलोचकों की शब्दावली में द वर्ल्डिंग ऑफ अमेरिका का दौर कहा जा सकता है। यह वास्तव में उस तथा कथित विश्व दृष्टि को, जो विश्व के बारे में पश्चिमी दृष्टि थी और गैर पश्चिमी देशों पर हावी करने का प्रयास था। पश्चिम के नाम पर भी रूस के पराभव के बाद यह मूलतः सुपर पावर के रूप में बच रहे अमेरिका की दृष्टि थी जिसे दो धड़ों में बटे विश्व के गैर विकसित या विकासशील देशों पर हावी करने का प्रयास हो रहा था। कहना ना होगा कि पृष्ठ संख्या 147, यह प्रयास अस्थायी रूप में कुछ हद तक सफल भी हुआ। ग्लोब अमेरिका का पर्याय हो गया और उसका यथार्थ बोध ग्लोबल यथार्थ। गैर विकसित या विकासशील देशों में जैसे इससे बचाव के विकल्प छिन गए, उनकी गैर जानकारी में उनकी जीवन शैली और अभिरुचि का अनुकूलन हो चला। अपनी स्थिति पर हाय हाय करते और ललचाई नज़र से उधर ताकने वालों ने इस प्रभाव को ऊपर से खिझी और भीतर से रिझी मुद्रा में अनिवार्यता मानकर स्वीकार कर लिया। दरअसल यह पूंजीवाद वृत्तियों, समाजवादी इरादों और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का सांस्कृतिक संस्करण था। लक्ष्य वही था, अपने वर्चस्व की स्थापना और प्रसार। फ्रेडरिक जेम्स के शब्दों में, वृद्ध पूंजीवाद का सांस्कृतिक विकास। नई तकनीकी के विकास ने इस आक्रमण को सहज बनाया। सेटेलाइट, टीवी और इंटरनेट ने सूचना के प्रभावों को पलक झपकते एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना आसान कर दिया। परिणाम यह हुआ कि आधुनिकतावाद के गहन अभिव्यंजनात्मक सौंदर्य के विरोध में पैबंदबाजी और अनेक शैलियों की गड्डमड्ड स्वीकृति इस शैली की पहचान बन गई। एक ऐसी भाषा का चलन शुरू हुआ जिसमें हर धंधे की अपनी अलग संहिता विकसित होने लगी। सबका अपना रजिस्टर था और हर व्यक्ति एक भाषाई द्वीप का दर्जा हासिल करने के लिए हाथ पैर मारने में लगा था। लेखक को भाषाई व्यापार को उत्तर आधुनिकतावादी व्यंजकों, चिन्हों की मनमानी और शुद्ध लीला के रूप में देखने दिखाने लगे। रचनाओं में माध्यम की भूमिका अहम हो गई। किसी कला रूप में ऐसे एक्सक्लूसिव वर्जित क्षेत्र को अमान्य करार दिया जाने लगा जिसमें दूसरे माध्यमों के प्रवेश और हस्तक्षेप की मुनादी हो। माध्यम की चर्चा के बिना एक ही कविता के लिखित और प्रस्तुत पाठों की समीक्षा को गैर मुकम्मल ठहराया जाने लगा। उत्तर आधुनिकतावाद के ऐसे परिदृश्य में समीक्षा और ऐतिहासिकता दोनों का खात्मा हो जाता है। आलोचक नाम का पाठक जिस अर्थ को रचना में से निर्मित करता है, वह लेखक के उद्देश्य और हेतु से एकदम मुक्त चिन्हों, शब्द की स्वतंत्रता, लीला पर निर्भर रहता है। वहाँ किसी के निजी अर्थ के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। दरअसल यह संरचनावाद का वह बिंदु था जहाँ से लेखक के विकेंद्रण की शुरुआत हुई, जिसका पूर्ण विकास देरिदा के विखंडन के सिद्धांत में हुआ। पृष्ठ संख्या 148, इस सिद्धांत की शक्ति रचना में हर तरह के वर्चस्व और केंद्रीयता का विरोध करने में प्रकट हुआ। चिंता की बात केंद्रीयता और वर्चस्व का टूटना या बदलना नहीं था, चिंता की बात थी विचारधारा मात्र का निषेध। विचार के बिना न रचना संभव होती है न सांस्कृतिक कर्म। हमारे चाहने या ना चाहने के बावजूद वह सहज रूप में अपनी जगह बना ही लेता है। उदाहरण के लिए, केंद्रीयता को विस्थापित करने के साथ ही जब उपकेंद्रों की तलाश शुरू हुई और उन्हें स्त्रियों, दलितों, उपेक्षितों, जनजातियों, बच्चों, भाषाई समुदायों यानी हाशिए के लोगों के रूप में देखकर केंद्रों के समानांतर स्थापित किया जाने लगा, तो यह भी तो निश्चित विचारधारा के तहत ही हुआ। विखंडन की प्रक्रिया में न कोई प्रधान होता है न गौड़। अर्थ की लीला यह होती है कि एक ही पाठ की पाठक के भेद से एकाधिक व्याख्याएं हो सकती हैं, जिनमें किसी भी उपकेंद्र से देखे गए सत्य की वैधता उतनी ही होती है जितनी किसी अन्य केंद्र से देखे गए सत्य की। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी देन या शक्ति यही है। मेरी ईगल्टन ने 1978 में ही क्रिटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी के पाठ की इस मुक्ति की अवधारणा पर घोर आपत्ति करते हुए साहित्य को विचारधारा से मुक्त करने का विरोध किया था। पश्चिम में इस विचार का अंत कभी नहीं हुआ कि रचना के पीछे रचनाकार के परिवेश की भूमिका होती है। इसीलिए परिवेश और विचारधारा के एक तरफा प्रासंगिक करार दिए जाने पर वहाँ पुनर्विचार किया जाने लगा। इस स्थिति में यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि उत्तर आधुनिकता के प्रहार से हिंदी आलोचना में जब इस सिद्धांत का जयघोष शुरू हुआ, उस समय तक यह विचार वहाँ संदेह के घेरे में आ चुका था। देवेंद्र ईश्वर ने सही सलाह दी थी कि हम अपने काव्य चिंतन को यूरोप का जंकयार्ड बनाने से बचा सकते हैं। उनके चिंतन को रिसाइकल करके प्रस्तुत करने के बजाय अपनी सृजनात्मक और बौद्धिक प्रतिभा को भरपूर तौर पर अमल में ला सकते हैं। पर कुछ समय तक विखंडन के नाम पर जटिल संकुल रचनाओं के तरह तरह के सार संक्षेप प्रस्तुत करके स्वनाम धन्य समीक्षक पाठकों को भरमाते और आत्ममुग्ध होते रहे। इनमें अधिकतर वही लोग थे जो किसी न किसी रूप में सूचना तंत्र से जुड़े थे। समीक्षा के नाम पर कुछ कृतियों के साथ इन्होंने जो विखंडनबाजी की वह अब हिंदी आलोचना के जंकयार्ड का ही हिस्सा हो चुकी है।